दूसरी किस्म के लोग, भाग दौड़ और सैर और तफरी और शौकीन लोग होते हैं। आप अपनी लफ्ज़ में कि शौकीन, सैर व सियाहत के शौकीन, शिकार के आदि, ये एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। अगर आप अंबिया कराम में देखें तो लिखिएगा, क्योंकि आप कहते हैं अंबिया कराम में भी सिद्दीकियत होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दो नाम ज़हन में रख लें। और सहाबा में लिखिए तो हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हो, इनका मिजाज एक्सट्रोवर्ट्स का था। हज़रत उमर तो बल्कि कहना चाहिए कि पहलवान किस्म के आदमी होते थे, यानी बड़े मजबूत जरी थे। इनको गौर व फिक्र और सोच विचार से तबई तौर पे कुछ ज़्यादा मिलान नहीं था। हाँ, इनके दिलों में बाप दादा की हमियत, आबा परस्ती, असबियत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हज़रत उमर को इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों से बड़ी सख्त दुश्मनी थी, अल्लाह के नबी से भी सख्त नाराज़गी थी। मैं इस नाम के लिए एक बड़ा मुख्तात सा लफ्ज़ बोला करती हूँ, इमोशनल पीपल, जज्बाती लोग। ये जो एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये जज्बातियत वाले होते हैं। प्यार का इजहार करेंगे तो साथ रो रो के आंसू भी, नाक भी बह रही होगी, गालें भी लाल होंगी, और साथ कहेंगे मैं आपको बता नहीं सकती मुझे आपसे कितना प्यार है। और खुदा ना खास्ता इनको कभी भी आपसे कोई गलत फहमी हो जाए, ज़रा सा इनके दिल में कोई कांटा चुभ जाए तो ये गुस्से के इजहार में भी टुप टुप करते निकल जाएंगे, जी मैं आज से आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं, और औरतें ही होती हैं मुझे लगता है ऐसी ज़्यादा, जो आया दिल में कह दिया। लेकिन याद रखिए, ये जब किसी चीज़ पे जमते हैं ना, तो ये मुकामे शहीद बनते हैं, ये शुहदा होते हैं। आप देखेंगे किसी कॉज पे सबसे ज्यादा भाग दौड़ करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं, इमोशनल। ठंडे लोग क्या करेंगे कि चुप कर जो, आना ही किसी ने नहीं, क्या बुलाना है, कोरोना भी है, पता नहीं बच बुझ के सारा इधर ही ना आ जाए, चुप 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 चुप। और वो जो वोकल होते हैं ना, वो कहते हैं क्या बात है, सब कुछ खुल गया है तो ये क्यों नहीं। और शादी में कल 400 लोग देखे हैं मैंने, क्या होगा अगर दर्श करते हैं 400 भी नहीं क्या आएंगे। ये जुरत वाले लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना, जुरत वाले होते हैं। हज़रत उमर को देख लीजिए जहन में लाते हुए कि मुसलमानों से दुश्मनी में पक्के सख्त, अल्लाह के नबी से भी सख्त नाराज़गी थी इनको इस्लाम से पहले। यहाँ तक कि एक दिन फैसला किया, आज चिराग़े नबूवत को गुल करके आऊँगा, नहीं तो घर नहीं आऊँगा। नंगी तलवार हाथ में लेके निकले, अल्लाह ने दिल की दुनिया पलट दी। सबको पता है उमर का कबूल है इस्लाम। हज़रत हमज़ा को देख लीजिए, कराबत रिश्ते में, चचा करीबी तरीन रिश्ता होता है चचा भतीजे का, मोहब्बत भी है, अजीज भी है। और एक दिन जाकर अबू जहल से लड़ाई कर रहा है, अब आके का टाइम नहीं है वरना तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। कहा मोहम्मद तेरा बदला लेकर आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा है चचा मुझे तो उसी खुशी होगी जिस दिन तुम इस्लाम के लिए लड़ोगे। अच्छा वो कैसे? कलमा पढ़ो। कहा चलो फिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। अब ये दो किरदार उमर और हमजा, इनको सामने रखिए। अल्लाह के नबी को दावत देते 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 6 साल गुजर गए, और इनको अपने सैर व शौक और शिकार से फुर्सत ही नहीं थी, इधर तवज्जो ही नहीं थी। तो ये एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं, देर से आते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में लिल्ले तो लिल्ले बड़े होते हैं, इनकी पार्टियाँ बड़ी चलती हैं, इनको भी बहुत जगह और जाना जाना है। इसके ऑपोजिट इंट्रोवर्ट्स, अल्लाह अकबर कबीर, अम्बिया कराम में ले लीजिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सोच विचार गौर व फिक्र तदब्बुर, व कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावाती वलर, सूरत अल अनाम में जिन्होंने ये वाक़ा सुना है, हज़रत इब्राहिम का मुशाहिदा है। और आप ही के साथ तो करके गई पिछले ट्रिप में, इब्राहिम अल्लज़ी वफा, इब्राहिम ने गौर व फिक्र करके सूरज चांद सितारे को देख कर रब को पाना चाहा, सलीमुल फितरत थे, हस्तीय बारी ताला पे गौर व फिक्र करना चाहते थे। अम्बिया कराम में अगर इनकी और दूसरी मिसाल देखें तो हज़रत इदरीस का नाम आता है, चूँकि इनका बहुत तस्करा नहीं होता लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में गौर व फिक्र बहुत था। आज भी जो लोग गौर व फिक्र करते हैं उनसे उम्मीद रखिए कि वो सिद्दीकियत पे पहुँचेंगे, जिनकी ज़िंदगी में वो कहते सानू पता ही नहीं लगता करना कि ये क्या वो है, तो गौर व फिक्र की आदत बंदे को सिद्दीकियत पे पहुँचाती है। सहाबा कराम में ले लीजिए, कौन थे इसकी मिसाल? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके तो नाम के साथ लफ्ज़ सिद्दीक जुड़ गया, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। और ख़वातीन में भी कोई थी जी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये हैं वो लोग जो सिद्दीकियत के मिजाज के हामिल हुए। तो लिखिए, सालेहियत के मर्तबे के बाद जो इर्तका होगा, मुश्किल जुमला है, बाद में आसान करती हूँ, सालेहियत के दर्जे में आप पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पे आ गए, अब इर्तका तरक्की, चौथी पे आए, पांचवी पे आए, छठी पे आए, करते करते आप जितना आगे जाएंगे ना, शुरू में एक ही सीढ़ी होती है। अगर आप मेरे हाथ को देखें तो यहाँ से नेकियों का सफर शुरू हुआ आपकी पाम से, इधर से चलते चलते गए चलते गए, यहाँ तक एक मुकाम सीधा। ये तो सब कोई करना पड़ेगा, नमाज, रोज़ा, हज और ईमान की कुछ चीज़ें जो आगे हम करेंगे। यहाँ तक जब आप एक ख़ास लेवल तक सालेहियत के पहुँच जाते हैं ना, तो उसके बाद दो रास्ते बन जाते हैं, यानी आप मेरी दो उंगलियों को देख लें या इनमें से मैं दो कर दूँ। अब जब आगे आएंगे ना, तो फिर दो लाइनें बन जाएंगी। फिर बंदा अपने मिजाज लिखिए, अपनी तबीयत, अपनी शाकिला, जैसा जैसा, कोई एक्स्ट्रोवर्ड है, कोई इंट्रोवर्ड है, उसके एतबार से दोनों में से किसी एक लाइन पे जाएगा। जब हम सूरत हदीद पढ़ते हैं तो उसमें आए थे, इन्नल मुसद्दकीन वल मुसद्दकाती वक्रदुल्लाह कर्दन हसना युदाफु लहुम वलहुम अजरुन करीम। आयत नंबर 18 है ये, जिसमें अल्लाह ने सदका करने कराने वालों की बातें कर दी, और इसमें ये बात बता दी कि ऐसे लोग यानी सदका खैरात करते हैं, और वहाँ अगर आप देखें तो लफ सुम्मा नहीं आता, बस डायरेक्ट बात आती है, वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून व शुहदा। जिन लोगों ने सूरह सदीद का कोर्स किया है, उनको आज वो वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रही हूँ कि जो वहाँ कहा था कि इन पे एक कोर्स कराऊंगी, डिटेल से बताऊंगी। अब जब आप एक ख़ास ने क्या सब ने करनी है, उसमें कोई मफर नहीं, जो कल बताई ना आपको बातें, और भी पूरी शरीयत, ये सालेहीन के लिए मस्ट है। ठीक है, यहाँ का साले जो पहले स्टेप पे था उसमें और यहाँ वाले में फ़र्क होगा, ये और अच्छा हो चुका होगा, इससे और अच्छा, लेकिन एक जगह आने के बाद फिर बंदा या तो सिद्दीकियत या शोहदा के काम पे आता है, यानी जब लोग सदका खैरात और इन्फाक फी सबीलिल्लाह करके अल्लाह की शरीयत को मानते जाएंगे, इनके दिल से दुनिया और माल की मोहब्बत निकलती जाएगी, ब्रेक खुल जाएगा, तरक्की होगी, इर्तिका होगा, और जो फिर आला मियारात और आला मुकामात तक उनको ले जाएगा, या तो इंसान सिद्दीकीन के मुकाम तक पहुंच जाएगा या शहीद के मुकाम पर। और हम हमेशा से देखते आते हैं ना कि नबूवत और रिसालत, आप देखिए कि लफ्ज़ नबूवत थोड़ा सा ऊंचा होगा और रिसालत नीचे होगा, क्योंकि नबूवत का रुतबा रिसालत से ऊंचा है। वजह क्या है, इसमें बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ खुलासा कर देती हूँ कि नबूवत दर हकीकत मुकामे उरूज में, नबूवत ये बंदा इधर था गारे हिरा में, एक बंदा बैठा हुआ है अल्लाह को याद करता है, और फिर उसको फरिश्ता आकर कहता है इकरा बिस्मी रब्बी का, तो अब यहाँ से देखिए उसका मुकाम ऊपर हुआ है ना। आम बंदा सालेहियत के दर्जे से इतना ऊपर आ गया इबादतों और रियासतों के साथ, गारे हिरा में आकर बैठना और पढ़ना और जो उनकी सच्चाइयाँ थी, एक दिन फरिश्ता आता है और कहता है कि आप नबी हैं, मिसाल है, तो ये नबूवत है। नबूवत में रफाए मुकाम होता है, बंदे का बशर यानी अबदियत से मुकाम ऊपर जाता है, और ऊपर जब आ गया ना, तो अब यहाँ से ये देखिए मेरे हाथ से रिसालत, फिर नीचे अब जाओ बंदों की तरफ, इन्ना उरसिलना, या सूरत मुज़म्मिल के आए थे ना कि हमने आपकी तरफ एक शाहिद भेजा जैसे हमने बनी इसराइल को भेजा। रिसालत में नबी फिर कौम की तरफ आता है, फिर वो पैगाम देता है, रिसाल वही है ना, जैसे तरसील आप ये ट्रांसपोर्टेशन को नहीं कहते, वही लफ्ज़ है। यानी नबूवत में बंदा अल्लाह के पास आता है, अल्लाह का कुर्ब आता है, नबूवत में अखज़ है, टेकिंग टेकिंग टेकिंग, उस्ताद बनने के लिए इल्म ले रहे हैं, मुशाहिदा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तजुर्बे कर रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं, हालात को पढ़ रहे हैं। जब आपका सीना भर गया तो आप रिसालत क्या के दे रहे हैं, दे रहे हैं, रिसालत में देना है, नबूवत में लेना है। पता नहीं कितना बाहर वालों को समझ आया, क्योंकि उनको फेस एक्शंस नहीं दिख रहे, लेकिन नबूवत मुकाम अरूज और रिसालत मुकाम नज़ूल है। नबूवत का रुख अल्लाह की तरफ है और रिसालत का रुख बंदों की तरफ है। यहाँ वो जुमला याद कर लें जो आप में से अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो सुनते ही रहते होंगे तफसीर में मेरे मुँह से भी, कि नबूवत ख़त्म हो गई, कारे रिसालत बाकी है। ये जो आज उम्मत मुस्लिमा को कहा गया ना, कुंतुम खैरा उम्मत अखरिजत, ये मुकाम रिसालत का नेक्स्ट स्टेप है कि अब तुम पैगाम पहुँचाओ। तो आप कह सकते हैं कि फिर इस एतबार से देखें तो नबूवत को रिसालत से ऊपर रखा जाएगा, लेकिन असल में सिद्दीकियत की असलाह रिसालत के लफ्ज़ से ही वाजे हो जाती है। कैसे, जैसे ही रसूल की दावत किसी सिद्दीक का मिजाज रखने वाले शख्स के कान में पहुंचेगी ना, वो फौरन लब्बैक कहेगा। इसे कोई देर नहीं लगेगी, इसलिए कि ये तो इसकी अंदर की पहली पुकार थी, इसकी अर्ज थी, ये तो ढूंढ रहा था। जैसे आपको ये ढूंढ रहे हैं और वो मिल जाए, आप सब छोड़ के वो चीज पकड़ के भाग जाते हैं, चलो अब बाकी खुद ही साफ करना। यानी वो लोग जिनकी तबीयत में सदाकत होती है, कान में पुकार पढ़ने की देर है या अल सलाह है या अल फलाह, तो वो फिर नहीं सो जाते, नहीं अभी 15 मिनट है, 5 मिनट बाद उठता हूँ, वो पहले बिस्तर से उतर कर मस्जिद का रुख करते, वो बल्कि मस्जिद में बैठे होते हैं अजान सुनने के लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कोई नेकी का मौका आ रहा है। वो ये नहीं कहते अच्छा सारे कर लो फिर जो बच गया अगर तो फिर मैं कर लूंगी, ना ना ना, वो कहते पहले मैं, सेल का साइन खुलते ही पहला मैं ही हूँ जो किसी स्टोर में जाऊँ, पहली चीज़ मैं ले लूँ क्योंकि फिर दूसरे ले लेंगे, सुबह सुबह उठ के मैं पहुंच जाऊं ताकि अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिल जाएं। नेकियों में ये मुकाम रखने वाला सिद्दीक पहले से तैयार होता है, वजू करके घर में बैठा हुआ, अजान की आवाज आए, मस्जिद का रुख करे, तो आप लिखिए एक जुमला, सिद्दीकीन की शख्सियत में बिल्कुल इसी तरह की आमादगी पहले से मौजूद होती है। चलिए इसको तो ज़रा रुकिए, अब लीजिए शेखुदा को, क्योंकि इस टॉपिक को समझेंगे साथ साथ। दूसरी किस्म के लोग एक्सट्रोवर्ट्स, शोहदा, इनको कबूले हक में देर लग जाती है अक्सर, क्योंकि फोकस नहीं होते। वो कहते हैं ना कितनी जगह तो टांगे अटकाई हुई हैं, किस किस के तो उम्मीदें दिलाई हुई हैं, 10 लोगों को आप एक ही वक्त पे अपना टाइम दे आए तो 9 तो आपको देख ही रहे होंगे ना। इनको बहुत कुछ करने का शौक होता है, बिजी बिजी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाइपर लोग। हक कबूल करने में देर लग जाती है, जैसे हजरत उमर और हमजा, 6 साल लग गए, कोई एक दो दिन की बात नहीं है। आपके शहर में 6 साल से दावत हो रही है, पुकार आ रही है, कुरान सीख लो सीख लो सीख लो, पता भी है जिसको, और फिर भी था आए 6 साल बाद आए तो आप कहेंगे कितनी देर से आई, लेकिन पता नहीं वो कितनी चीजों से निकल कर आई वो, इसलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन देर से आकर भी ये लोग वो काम कर जाते हैं जो कभी कभी शुरू से सुबह से बैठे हुए भी नहीं कर रहे होते। देखिए काम की रफ्तार है ना, कोई सुबह फजर से ही लगा हुआ है और कोई फजर के बाद आराम कर करा के 1 घंटा पहले उठकर भी उससे जल्दी काम कर जाए, है ना फर्क, इंसानों में फर्क होता है ना। आज आपको यहां वो जुमला समझ, जो हमेशा मेरे जहन में बहुत क्लिक करता था, आप देखिए कि मैं अक्सर सोचती थी कि अल्लाह के नबी का ये जुमला कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता है ना, और साहिबे इल्हाम शख्स कोई है तो वो उमर है, और तीसरा उमर की शान क्या है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान भाग जाता है। कितने प्यारे जुमले बोले आपने हजरत उमर के बारे में, लेकिन पहले खलीफा तो अबू बकर को बना दिया, नहीं समझे, दोनों का मिजाज फर्क है। नबी की बातों के इशारे कि अगर मेरे बाद खलीफा ना होते बल्कि नबी होते तो उमर होते, आज आपको उसका जवाब मिल रहा है, तबीयतों का फर्क। हर तरह के लोगों की इस्लाम को ज़रूरत होती है, कोई आपका साथी, कोई आपकी टीम का बंदा, कोई आपके साथ काम करने वाला सुस्त है ना, तो शुक्र करें उसने आपको कंट्रोल करके रखा है, आपको बागे भी तो डालनी थी ना। कोई फैसला करने में देर लगाता है तो भाई मुबारक हो आपको, शुक्र कीजिए, वरना आप गलत फैसले करके आगे बैठ चुके होते और अभी तक उसने आपको जवाब ही नहीं दिया और आपने उसको कितनी गलतियों से बचा लिया। और अगर कोई बहुत फास्ट है आपकी टीम में, आपको लगता है ये बड़े हर वक्त जल्दी में होते हैं, तो शुक्र कीजिए वरना आपने तो अभी तक पहले आप में पड़े होना था। वो कहते हैं ना कि 2 बच्चे थे माँ के पेट में तो पहले आप में 4 माह गुजर गए, तो फिर भी तो ये भी तो काम नहीं चलता, तो ना बहुत सुस्ती ना बहुत चुस्ती। वो वाक्य याद कीजिए, अल्लाह के नबी ने एक रात जब गश्त किया तो उमर पढ़ रहे हैं कुरान, तो बड़ी ऊंची ऊंची तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, उमर के पास से गुजरे तो आवाज़ इतनी ऊंची, और अबू बकर को देखा तो बिल्कुल ही हल्की सी आवाज़, भाई उमर आप क्या कह रहे थे, कहा मैं सोतों को जगा रहा था और मैं ऊंची बोल रहा था, उनके अंदर जज्बात थे वो बोलना चाहते थे। कुछ लोग तो अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनको देख के आपका भी दिल करता है मोहब्बत करने को। अच्छा उमर ने कहा एक तो सोतों को उठा रहा था और दूसरा का शैतान को भगा रहा था, यानी रात को उठ के बंदा सुमिन मिन करे तो खुद ही सो जाए, कहा मैं तो शैतान भगा रहा था। कहा अबू बकर आप क्या कह रहे थे, कहा अल्लाह के नबी जिसको मैं सुना रहा था वो सुन रहा था, वो तो ऐसा भी सुनता, वही दसा कई बादी अन्नी फनी करीब, और मैं सोते लोगों का ख्याल कर रहा था। अब मुझे बताया कौन गलत कौन ठीक, आपने कितना खूबसूरत सलूशन दिया, आपने कहा कि उमर कल से आप ज़रा सा अपना वॉल्यूम डाउन कर लें, ज़रा हल्के हो जाएं, और अबू बकर से कहा आप ज़रा सा इंक्रीज कर लें, दैट इज़ द टीम वर्क। ये है टीम वर्क, दैट इज द एक्सीलेंसी, ये है बुनियाद महसूस। अभी दो कोर्स करा चुकी हूँ उसके अमेरिका में, आप भी परसों गुजरी तो परिंदे दिखे और ऐसे जुड़ रहे हैं, एक आगे और वी शेप में पीछे, मगरिब का वक्त था तो मैंने कहा ये तो मैंने तस्वीर दिखाई कोई नहीं बुनियादों महसूस में, अच्छा अब एक तीसरा भी करना है। कायनात बुनियादों महसूस है, डिसिप्लिन से काम चलते हैं, एक लीडरशिप के पीछे चलते हैं, हर एक अपना मुंह उठाकर नहीं चलता, नहीं पसंद मानना पड़ेगा, नहीं दिल कह रहा करना पड़ेगा, बहुत दिल कह रहा है चुप करना पड़ेगा। ये है असल में वही बात है कि इन सबको काट दें इधर से लेके यहां तक, बल्कि इधर से काटें तो कोई भी काम नहीं कर सकते। उंगलियां पांच बराबर नहीं होती, दुनिया में लोग बराबर नहीं होते। तो उमर जैसे लोग इस्लाम देर से लाए, लेकिन कहते हैं कि इस्लाम बंद कमरों से खुली जगह पे आया था उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद। तो लिखिए एक जुमला, शुहदा अपनी फालियत, फालियत कहते काम करना, फेल से बड़े एक्टिव होते हैं, फालियत की वजह से आगे निकल जाते हैं, इसलिए कि अपनी शख्सियत के खास मिजाज के एतबार से वो कवी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं ना, मनवाने वाले, तो वो मानने वालों से ज्यादा मनवाने वाले होते हैं। तो बहरहाल हजरत उमर और हमजा के इस्लाम लाने के बाद धड़ल्ले से मुसलमान आकर हरम में खुल्लम खुल्ला नमाजें पढ़ने लगे, और सहाबा कराम में से कोई हिजरत के लिए जब निकलता तो छुप कर निकलता था, किसी को खबर ही ना हो, कोई मुजाहमत करेगा, कोई मुश्किल आएगी, खून बहेगा, लेकिन हजरत उमर हिजरत के लिए निकले तो सब के सामने आकर हरम में 2 रकत नमाज पढ़ी और ऐलान किया, मैं हिजरत के लिए जा रहा हूँ, जिसका इरादा हो कि उसकी माँ उसको रोए, और जिसकी बीवी बेवा हो जाए, और जिसके बच्चे यतीम हो जाए, तो आ जाए मेरा रास्ता रोक ले। ये है एक्सट्रोवर्ट्स, ये है शहीद, ओपन, यानी ये डरपोक नहीं होते। डंके की चोट पे रिसालत की, और इनके कबूले इस्लाम का वाक्या भी आपको था, सीधा अबू जहल के घर गए थे कि कहने लगे मेरे इस्लाम लाने का सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, हम होते कहते उसको डिलीट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, उसका फेसबुक व्हाट्सअप निकाल निकोल कर छुप छुपा के बैठ जाओ, ये सीधा जाकर टिवायतों में आता है, अपनी तलवार की जो धार होती है ना, टक टक उससे दरवाजा नॉक किया, खुली तलवार है, और वही तलवार जो कल गई थी किसी और का सर कलम करने, आज उमर के कुफर को कलम करके आ गई। तो अबू जहल ने दरवाजा खोला तो हैरान हो गया हाथ में उमर की तलवार देकर, उमर तुझे क्या हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलल्लाह, उसको समझ ही नहीं आई, अबू जहल को सट पटा गया, उसने जाकर दरवाजा बंद कर लिया कि पता नहीं अब अगली मेरी गर्दन पे उमर की तलवार ही ना आ जाए। जी ऐसे लोग वोकल होते हैं, इस्लाम को बड़े पसंद है, हदीस में आता है कि अल्लाह को कवी मोमिन दईफ मोमिन की नस्बत ज्यादा प्यारा लगता है, तो जो शुहदा का दर्जा है ना अल्लाह को ज्यादा अच्छा लगता है। तरबियत हुई होनी चाहिए, बदतमीजी ना अंदाज में, मुंह फट ना हो, लेकिन जो बंदा सच बात को अच्छे तरीके से सामने कह दे वो उससे लाख दग दे अच्छा है, जो मुंह पे तो बड़ी इज्जत इज्जत तारीफ रिस्पेक्ट की बातें करता रहे और पीठ पीछे बात कर दे दूसरे से, ताकि फिर बाद में गॉसिप हो और एक बात जो है वो बतंगड़ बन जाए। तो लिखिए अपने लिए जुमले के रिसालत का जो असल मनसब है वो क्या है, दीन को कायम करने की कोशिश, सही जिद्दोजहद, तो इसमें शुहदा ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। हज़रत हमजा की शुजात ग़ज़वे बदर में साबित हुई, मज़े की बात आज लीजिए, कभी नहीं आप सुनेंगे हज़रत अबू बकर के बारे में कि किसी के सामने आमने जाके मुकाबला किया, दू बदू जिसको कहते हैं, हाँ वो बात आती है कि आपके बेटे अब्दुलरहमान जब इस्लाम कबूल करते हैं ना तो कहने के अब्बा जान आप ग़ज़वे बदर में मेरी जद में आगे थे, लेकिन मैंने आपकी रियायत की, बाप समझकर छोड़ दिया, तो आपने फरमाया कि बेटे तुमने ये इसलिए किया कि तुम बातिल के लिए जंग कर रहे थे, खुदा की कसम अगर कहीं तुम मेरी जद में आ गए होते तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। यह है सिद्दीकियत का मुकाम, सगे बेटे को कह रहे हैं कि तुझे मार देता छोड़ता ना, तो लिखिए सिद्दीकियत का मुकाम नबूवत से करीब तर होता है, लिहाजा मुकाम और मरतबे, जो मरातबे ईमानी पढ़ रहे हैं ना तो उस लफ्ज़ को मरतबे में समझिएगा, मुकाम और मरतबे में नबी सल्लम के बाद मुलहक जुड़ा हुआ, इलहाक बोलते हैं ना लहक से, चिपकने को भी कहते हैं, नबी सल्लम से जो जुड़ा हुआ दर्जा मुकाम मरतबा वो अबू बकर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह अन्हु। तो सूरत निसा की आयत 69 में नबी जीन के बाद सिद्दीकीन के लफ्ज़ में बात समझ आ गई। अब ये बातें जो हम पढ़ते हैं समझ आ जाती हैं, हिकमतें समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आप इस चीज़ को सामने रखें ना, दो टर्म्स भी समझ लें यही, जो भी बात समझ जाएंगे अच्छी है। लफ्ज़ लिखिए कुरान में, एक नस्बत आती है सिद्दीकन नबीयन, यानी नबी के लफ्ज़ के साथ जब भी बात आती है, अभी आयतें भी लिखाऊंगी घबराइए नहीं, सिद्दीकन नबीयन, और दूसरी टर्म आती है रसूलन नबीया, समझ रहे हैं? यानी नबी के साथ लफ्ज़ सिद्दीक़ जोड़ जुड़ता है, और रसूल के साथ नबी का जो आता है, ये दो अल्फाज हैं। मसलन पहली आयत लीजिए, अम्बिया रसूल के बारे में सूरत आले इमरान की आयत है, इन्ना अल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमराना, याद आ रही है ये आयत कहाँ है? हज़रत मरियम की माँ के तस्करे के साथ वाली आयत है, आयत नंबर 33। क्या किया उनको, किधर चुना, अलल आलमीन, क्या कहा, अल्लाह ने अपनी रिसालत के लिए पसंद फरमा दिया आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को और आले इमरान को, तमाम दुनिया पर। तो रिसालत और नबुव्वत के लिए ये इंतखाब इंसानों में से हुआ, लेकिन कुछ अंबिया कराम के मिजाज में सिद्दीकियत का रंग झलकता था और कुछ में शहीद का रंग। कैसे? मसलन आप देखिए कि दो मिजाज है ना इंसानों के, जिस पे बात हो रही है। एक वो मिजाज होता है जिसकी मुनासबत सिद्दीकियत के साथ है, और दूसरे की मुनासबत शहादत के साथ है। कुरान में सूरत मरियम आयत 41 और 56 दो आयतें हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका मैंने पीछे तस्कर आपको कर दिया, इनके दोनों के नाम के बाद लफ्ज़ आता है इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया, सच्चे नबी, सिद्दीकन नबिया। अब इसमें ये नस्बत नबुवत की तरफ बात हो रही है ना, नबुवत सिद्दीक के साथ आया। देखिए ये नबी के लफ्ज़ के साथ भी लफ्ज़ सिद्दीक और शहीद एक और ही रंग लेता है, जिसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने का भी वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि नबुवत की तरफ बात करेंगे तो लफ्ज़ सिद्दीक आएगा, रिसालत की तरफ नहीं। हाँ, रसूल की दावत को कबूल करने में सिद्दीकीन और शुहदा में फ़र्क होगा। दाई की हैसियत से रसूल सामने आता है लोगों के, जैसे अल्लाह के नबी आए, जैसे मूसा फिरौन के सामने आए, तो दाई का मामला रिसालत का है, जैसे पहले भी बता दिया। रसूल की दावत के रद्द अमल के एतबार से फ़र्क क्या होता है कि सिद्दीक को कबूल करने में देर नहीं लगती, दोहराई हो रही है आपकी, पहले ही मुंतज़िर थे, लेकिन शुहदा को थोड़ा सा वक्त लगेगा, इधर उधर होंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन सिद्दीकियत और शहादत का लफ्ज़ जब नबुव्वत के साथ जुड़ जाता है ना, तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह जिनको नबुव्वत के शर्फ के लिए चुनता है ना नबी, उनमें कुछ का मिजाज सिद्दीकी होता है और कुछ का शहीदी मिजाज होता है। सूरत मरियम की आयत 51-54 लिखिए, रसूलन नबीयन कहा गया अमूमन, और अगर आप इस चीज़ को देखें ना, तो ये तो पूरा आपको अगर मैं अम्बिया का ट्री बनाकर उनके जितने हालात और वाक़यात कुरान में, ख़ासतौर पे जो 6 नबियों के आते हैं, उनका करके दिखाऊं, तो आपको इतना समझ आ जाएगा अल्लाह ने हिसाब कैसा सख्त लेना है। आप जितने लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, मैं बैठी हूँ बात कर रही हूँ, बाद में सुने, हम में से हर एक का मिजाज फ़र्क है। आप में से कोई ज़्यादा से ज़्यादा किसी मुकाम पे पहुँच सकेगा ना, तो वो या तो शहीद का तो या सिद्दीक़ का, बड़े खुशबख्त होंगे कि जो शहीद और सिद्दीक दोनों इकट्ठे हो जाए। दैट इज़ डाइवर्सिटी, इसको आप कह सकते हैं कि, मिसाल देती हूँ कि कोई बात करता है ना, एक ही अंगाल से बात करता है, कोई उस्ताद है, कोई स्पीकर है, आप उनको जब भी सुने, साल पहली बार सुने तो हर साल सुन लें, एक ही स्टाइल होगा, समझ रहे हैं? मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं, कोई राह लगा के पढ़ता है तो हमेशा राह लगा के ही पढ़ता है, कोई बहुत संजीदा नपी तुली बात करता है तो हमेशा ऐसे ही करता है, कोई बहुत जोशीली करता है तो करता है। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो, क्या कहेंगे आप उसको, डायवर्शन होती है। इसी तरह इंसानों में से कुछ का मिजाज सिद्दीक का ही रहेगा, बस वो इससे ज़्यादा नहीं आगे हो सकते। मसलन जैसे फौज का कमांडर जर्नैल, वो सिद्दीक है, खुद नहीं करेगा, कराएगा, समझ बूझ बड़ी होती है, फैसले बड़े अच्छे करता है, तहम्मुल बहुत होता है, फैसला करने में वक्त लगाता है, लेकिन हाथ में तलवार नहीं पकड़ के निकलता, आपको हजरत अबू बकर के जंगी जौहर बहुत कम दिखेंगे, है ही नहीं, बल्कि दिफा किया अल्लाह के नबी का जंगों में भी और मक्का में तो किया ही था, लेकिन खुद तलवार लेकर कोई बंदे नहीं मार किया है क्योंकि उनका मिजाज ही नहीं था। इसके बरक्स आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ आपको शहीद मिजाज दिखता है। एक जुमला लिखिए जिससे आपका शायद उकदा खुल जाए। सिद्दीक का मिजाज तो सिदाकत का हो, लेकिन अज़म और इरादे के एतबार से उसके अंदर शहीद वाली पूरी शख्सियत होनी चाहिए। मुराद आसान कर दूं, आम हालात में नहीं होगा, लेकिन सर पे पड़ेगी ना तो तलवार भी लेके निकलेगा। कितनों को समझ आई? नहीं समझ आई तो और समझाती हूँ। नबी सल्लम की पूरी ज़िंदगी में अबू बकर का आपको ये मिजाज नहीं दिखा, हमेशा ठंडे ठंडे पीछे पीछे सूझबूझ वाले। बदर के कैदियों के मामले में दोनों की राय का फ़र्क देख लीजिए कि उमर कह रहे हैं कि लाइए इनको दीजिए, बल्कि हमारे रिश्तेदार हमें दें, हम उनको कत्ल करें। सुनते हैं ना बातें जैसे भी लोग पेश करते हैं। अबू बकर ने कहा नहीं नहीं छोड़ दीजिए, चलो फ़दिया ले लेते हैं। फ़र्क था ना, ये मिजाजों का फ़र्क था। लेकिन वही अबू बकर जब नबी सल्लम की ज़िंदगी के बाद सुबहान अल्लाह खिलाफत के दर्जे पे फायज होते हैं। अब यहाँ आपको मैं क्या बताऊँ और क्या छोड़ूँ, मेरा तो वक्त फिर पूरा होने लगा। नबी सल्लम की ज़िंदगी में अबू बकर का मिजाज रकीकुल कल्ब, सॉफ्ट दिल, नरम, नहीफुल जुस्सा, कमज़ोर जिस्म। धोती बांधते थे ना तो वो लुढ़क जाती थी, नीचे गोश्त ही नहीं था कि उस पर तहबंद रुके, तो कहते थे कि मेरे तो टखनों से नीचे चला जाता तहमत, उनकी जिस्म पे गोश्त नहीं था। वो इस तरह के इंसान महसूस होते नहीं थे जैसे कि बाद में जाहिर हुए। और वो कब? जब अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर खिलाफत की जिम्मेदारी का बोझ आया, हालात नहायत क्रूशियल हो गए, क्रिटिकल हो गए, महदूश हो गए। इतनी बड़ी बगावत बरपा हो गई कि दारुल इस्लाम दो शहरों तक महदूद हो गया था, यानी जिसको आप कह लें कि जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, खुश्की पे भी फसाद, तरी पे भी फसाद। उधर से झूठी नबूवत के दावेदार खड़े हो गए और लाखों लोग मुसैलमा के अज़ाब के साथ हो गए। जंगे युमामा में कई सौ हुफाज शहीद कर दिए गए। अब वो नहीफ और कमज़ोर अबू बकर, तशवीश तो हुई, इतने हुफाज शहीद हो गए, कहने लगे कि कुरान ही ना गुम हो जाए, अल्लाह के नबी का विरसा, आपकी लेगेसी, इसको फौरन किताबी शक्ल में मुरतब कराना। दूसरी तरफ ज़कात ना देने वाले खड़े हो गए, पता चला कि अगर ये खड़े हो गए तो कल लोग आएंगे कहेंगे हमसे पांच नमाजें नहीं पढ़ी जाती। तो लिखिए, हर रेवोल्यूशन के बाद, हर इनकलाब के बाद जो एक काउंटर रेवोल्यूशन आता है ना, यानी हर इनकलाब के बाद एक छोटा इनकलाब ज़रूर आता है, ये लिख लें। आप इस बिल्डिंग से निकल कर किसी दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, ये एक इनकलाब है, मिसाल है। और अल्लाह करे आप यहाँ से निकलें तो अपनी में जाएं। मैं तो हमेशा आपको ये ख्वाब दिखाती रहती हूँ, फिर आगे अल्लाह जाने और आपके नसीब जाने। नबी सल्लम की ज़िंदगी में एक इनकलाब मोहम्मदी आया ना, उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में एक काउंटर रेवोल्यूशन भी आया। दोबारा छांटी होगी, ये लिख लें, सीधी सी बात है। एक मोटी छलनी लगती है हालात की। कुछ लोग नबी की ज़िंदगी में भी छन के निथर आए थे और वो भूसी भासी ऊपर रह गई थी, और एक उससे पतली छाननी लगाकर अबू बकर के दौर में अल्लाह ने ये फिर दिखा दिया, एक दफा और देख लो कौन सच्चा है कौन झूठा है। जब कहीं इनकलाब आना है, बंदे बदलने हैं, छांटी होती है, ये अल्लाह की एक सुन्नत है कि जब कोई रेवोल्यूशन आना होता है ना, उससे पहले अल्लाह छांटी करता है। क्योंकि वो देखे ना, अगर कंकर, रोड़े, पत्थर, बाजरा भी गंदम के साथ नीचे आ गया तो आटे में किरचे आ जाएंगी, मुंह में आएगा तो करेगा। अल्लाह ने ऐसी छंदलियां लगाकर कंकरों को उठाकर फिर हक को निथारना होता है। ये सिद्दीकियत और शहादत की बातें यहां बैठ के कितनी आसान लग रही हैं। शायद लफ्ज़ तो मुश्किल लग रहे हो, अमली जिंदगी में पसीने पसीने हो जाता है बंदा। हमसे तो 100, 200, 500 डॉलर की चीज़ नहीं छूटती अल्लाह के लिए। हमें एक जॉब क्या नज़र आ जाती है, हम कहते हैं जाएं तुम सब, कौन सा ये हमारी वर्क है, ये तो हमारी वॉलंटियर ही था ना, ख़त्म हो गया। वॉलंटियर का मतलब जब कुछ नहीं करने को तो चलो हम कुछ कर लेते हैं, और एक लेटर भी कोई दे दे तो बड़ी बात है, खामोशी में हम पीछे हो जाते हैं, फिर कभी फारिग होते हैं फिर आ जाते हैं। चलिए आपका ये भी ठीक है, इस ओके। लेकिन याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर में एक इनकलाब आया, उसकी तकमील हुई, और इस इनकलाब की तकमील के मरहले पर मुखालिफ कुव्वतें जब देख रही थी कि अब तो हम बेबस हो गए, दुबक गए, नबी की ज़िंदगी में कुछ लोग दुबक के, वो कहते हैं ना, हाइबरनेट हो गए, लेकिन मुंतज़िर रहे, चलो कोई मौका आएगा तो हम भी कुछ करेंगे। और जूं ही अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, अल्लाह की पनाह, बातिल कुव्वतों ने सर उठा लिया। एक तरफ तो मुसलमान सदमे और गम से निढाल थे, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मोराल भी कम हो गया, दूसरी तरफ फितने उठ गए, कोई ज़कात नहीं दे रहा, कोई कहता मैं नबी हूँ, आप कह लीजिए इस्लामी रियासत सिर्फ मक्का और मदीना तक महदूद होगी, यानी जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था ना, कुचली बनाकर वहीं आ गया। ये इर्द गिर्द के सारी जो साइड ब्रांचेस कह लें आज की ज़ुबान में, साइड के काम और जो लोग कुछ करते थे कुछ नहीं, उन्होंने कहा वो तो लीडर तो रहा नहीं, चलो फिर हम दूसरों से मिल जाते हैं, चलो हम दीन ही सीखना है, करना है, कर लेते हैं। ये चेंजेस आती हैं, लीडर जो होते हैं ना वो कश्ती के पतवारों की तरह होते हैं, एक दफ़ा तो हिलते हैं साथी। हज़रत इब्ने मसूद कहा करते थे गालिबन कि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद तो ऐसे लग रहा था कि कश्ती बग़ैर किसी कश्ती चलाने वाले के पानी में तैर रही है, और हमारा कोई है ही नहीं चलाने वाला। ऐसे वक्त में अबू बकर सिद्दीक ने, दिल करता है कि रदी अल्लाह अन्हुम 10 दफ़ा बोलो, ऐसे वक्त में जो आपके उस कॉज और उस मिशन को गिरने ना दे, वो आखिरी तार साबित हो जाए कपड़े का जो फटने से बच गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की कायम करदा रियासत को रिक्लेम किया। ये होता है सिद्दीक, आप कैसे उनकी इज्जत और मोहब्बत दिलों से निकाल सकते हैं, जब सब छोड़ जाएं तो वो तब भी खड़े हों, जब सब भाग जाएं तो वो खड़े हों। ये काम फिर फौलादी अज़म से होता है, आयरन नफ्स, कोहे हमालिया जितनी अजीमत के साथ किया, किसने? सिद्दीक अकबर ने। अबू बकर सिद्दीक ही नहीं थे, सिद्दीक अकबर थे। ऐसे वक्त पे उमर भी मशवरा ले रहे थे कि अल्लाह के बंदे जरा सी मसलहत के साथ काम कीजिए, ये अब क्या कर रहे हैं अबू बकर, इधर भी महाज खोल दिया, ये अच्छी बात नहीं है, ये लश्करे उसामा, कल का बच्चा 17 साल का उसामा पकड़कर आप किसकी कर रहे हैं? अबू बकर जरा सोचिए, अब देखिए उमर की नीयत तो अच्छी थी ना, लेकिन सतही सोच फैसला था। हज़रत अबू बकर के ऊपर कह लीजिए कि तनकीद कर रहे थे उमर, अबू बकर की शूरा में उमर मौजूद थे, और अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने साथी की बात मान लेते तो ढीले हो जाते ना, इसलिए आपकी शूरा में स्ट्रांग लोग होने चाहिए ईमान के एतबार से, कुछ सिद्दीक भी उसमें हों, कुछ शहीद मिजाज के भी लोग हों। और अबू बकर को जो राय उमर दे रहे हैं वो बिल्कुल अपनी समझ से बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, देखा जाए तो हर बात के दो ही एंगल होते हैं ना, ये भी ठीक तो वो भी ठीक। वो कहते हैं ना जिसकी सुनो वो ठीक लगता है, लड़की वालों की सुनते हो कहते हैं हम सच्चे हैं ठीक लगता है, लड़के की सुनो लगता नहीं लड़की झूठी है ना। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है, अब ये लश्कर मत भेजिए। लेकिन हज़रत अबू बकर की सिद्दीकियत, और वो कहना चाहिए कि सिद्दीकियत अकबर ने उस वक़्त इस बात पे जमा दिया कि जिस लश्कर की तैयारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, मैं उसको कैसे रोक दूं? ये सिद्दीकियत का मुकाम होता। फिर आपने जैश उसामा भेजा, और आपको तो क्या हुआ था, पता हुई थी, वही हुआ था जो होता है इस रस्ते में, लेकिन वो जिनके दिलों में डाउट्स लीडर के लिए आ गए थे ना, उनको नहीं पता था। कभी कभी लीडर को सबको पीछे करके कहना था जाओ तुम, मैं खड़ा हूं, तुम जाओ, मैं अकेले कर लूंगा, करना शुरू करें सब आ जाएंगे साथ। जैसे हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के नबी ने अपनी लीडरशिप दिखाई थी ना, और जो नबूवत के दावेदार थे अल्लाह अकबर मुर्तद हैं, इस पे तो किसी को शक नहीं था कि ये इस्लाम से निकले नहीं, उनके खिलाफ जंग तो करनी थी। हजरत अबू बकर ने किसी से मशवरा नहीं लिया। मजे की बात देखिए, उधर जैसे उसामा का लश्कर वो लिया जाए कि ना जाए, शूरा से मशवरा लिया, क्योंकि एक मुबहम मामला लग रहा था, या कह लीजिए कि ज़कात के ना देने वाले को। लेकिन जिधर नबूवत का दावा किया, अबू बकर ने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि इस पे कुछ ज़रूरत है, ये तो सीधी पकड़ो और इनको ख़त्म कर दो। और जब ज़कात वालों का मामला सामने आया तो उस वक़्त आप देखिए कि यानी क्या कहानियाँ खोल दो, पूरी तारीख है। सुभान अल्लाह, जिन्होंने ज़कात देने का इनकार किया ना, उन्होंने ये नहीं कहा था ज़कात नहीं देनी, लिखिए बात, नमाजों का उन्होंने इनकार नहीं किया, झूठी नबूवत का इकरार उन्होंने नहीं किया, अरकान इस्लाम में से किसी रुकन का इनकार नहीं किया, सिर्फ ये कहा था कि अपनी ज़कात हुकूमत को नहीं देंगे। हम इसे अपने तौर पर तकसीम करेंगे जैसे चाहेंगे। नहीं समझे? याद सारे हम पाकिस्तानी करते ही हैं, क्योंकि आज है ही कोई नहीं निज़ाम चले। उन्होंने कहा था हम अपनी ज़कातें खुद बांटेंगे, बैतुल माल में क्यों डालें ये पैसे, क्यों हमें दीजिए, हम खुद अपने हाथ से खर्च करें। आज भी कुछ लोग होंगे भाई हमें इजाज़त दे दें, हम पैसे कलेक्ट करेंगे फिर हम खुद खर्च करेंगे। आप क्यों पूछते हैं कि किधर खर्च गए किधर? हम अपनी मर्जी से तोहफे खरीदेंगे, ये करेंगे, ये सोचती। हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया उमर ने कि ज़रा नरमी बरती है, ज़रा सा नरमी बरती है, इस वक्त हम कच्चे हैं, खतरों में हैं, आप ना इतनी बड़ी बात करें। तो हज़रत अबू बकर ने पहले तो उमर को डांट पिलाई जी, कहा तुम दौरे जाहिलियत में तो बड़े सख्त थे, ये इस्लाम में आकर तुम नरम क्यों हो गए हो? खुदा की कसम अगर अल्लाह के नबी के ज़माने के ऊँटों के साथ इनको बांधने वाली रस्सियाँ भी देते तो अब ये ऊँट अगर देने को तैयार हों और रस्सियाँ देने से बस इनकार कर दें, मैं तब भी उनके साथ एलाने जंग करूँगा। ऐसे लीडर्स चाहिए होते हैं, छोटा बड़ा रूल नहीं होता, बात बड़ी होती है छोटी जिसकी आप तोड़ रहे हैं। कहा करते थे अयुबद्दिलुद्दीनु वा अना हय्युन, क्या दीन के अंदर तरमीम हो जाए और मैं भी जिंदा हूं? यानी मेरी जिंदगी में तुम असूल और रूल्स तोड़ रहे हो, मेरे बात तो तुमने पता नहीं बेच बाज के खाट जाना सब कुछ। ये स्टाइल था, इसको कहते हैं मुकाम अजीमत, और ये है सिद्दीकियत का मुकाम। और आप देखिए कि जहां वो खड़े हुए अल्लाह ने फिर उनके अजम वलवले और हौसले का नतीजा जाहिर कर दिया। हज़रत अबू बकर का दौरे खिलाफत 2.5 बरस भी नहीं है टोटल, 2 साल 4 महीने, और इस छोटे से अरसे में वो कह लिए ना कि वही जो काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी ना उसको ख़त्म कर दिया। वो इनकलाब के जो असरात थे ना, जैसे आप इस घर से दूसरे घर में गए तो अब उधर पटारे खुले हैं, पोटले पड़े हैं, क्या करें, उनको खोल खोल कर सब सीधा करके बिल्कुल रेनोवेटेड नया घर उमर के हवाले करके अबू बकर दुनिया से गए। यानी अबू बकर ने दुनिया से जाने से पहले उमर को कोई उलझा हुआ दीन नहीं दिया कि अब तुम जो मर्जी इस पोटलियों को खोल के जिधर दिल करा लगा लेना। अंदर की सारे फितों का कलाकामा किया। इसीलिए तो आप देखिए दौरे फारूकी में सहाबा की फौजें मशरिक मगरिब और शिमाल की तरफ निकली और सिर्फ 10 साल के अंदर पूरे ज़मीन में 22 लाख मुरब्बा मील इस्लाम के अंदर आ गया। तैयारियां जिसको आपकी ज़बान में बोलो प्रेपरेशन अबू बकर ने की थी, और वो वक्त पे जो 3-4 घंटे का फंक्शन था वो 10 साल की सूरत में उमर ने कर लिया। अगर आज आपने प्रेपरेशन ना की होती तो ये 1 घंटे का सेशन ले सकती थी? प्रेपरेशंस करने वाले सिद्दीक होते हैं और वक्त पे महफिल का रंग भरने वाले शुहदा होते हैं। कौन किसकी अहमियत का इनकार करेगा, कौन किधर लेके जाएगा? तो मान लीजिए कोई ऊपर का तबका हो कोई नीचे वाला हो, सब में खूबियाँ होती हैं। कोई सामने आए कोई पीछे हो, सब अहम होते हैं। कोई स्टेज पे आकर माइक पकड़ लेता है तो कोई बच्चे पाल रहा होता है, तो कोई पीछे बैठकर कंप्यूटर का काम कर रहा होता है, सब अहम होते हैं। कुछ डोरमेंट्स होते हैं, वक्ती तौर पे समझ नहीं आता किधर हैं, वो कब जाहिर होंगे जब कोई मसला आएगा। यानी टेक्निकल में कोई अगर कोई मसलों को हल करेगा उसको तब बुलाएंगे जब माइक काम नहीं करेगा। तो जब कोई महाज आते हैं, मरहले आते हैं, तो शुहदा का काम शुरू हो जाता है। और जब प्लानिंग्स और प्रेपरेशंस होती है ना, तो उस वक्त पे सिद्दीकियत को लाना पड़ता है। बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा भी है इस पर, लेकिन बस आपके मेरे नसीब में आज इतना ही था। इंशाल्लाह हम कल इस टॉपिक को कवर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा आपका दिल सीना खोल दे और अपने लिए खुद फैसले कीजिए। ज़िंदगी ज़ाया करनी है, सालेहीन भी पूरे बन जाए तो जन्नत पक्की है, पक्की जन्नत है आपकी मेरी, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया उलाए का हसुना रफ़ीक। और अगर शहादत वाली खूबियाँ हैं तो शहीद बनिए, सामने वाली वक्त पे काम करने वाले हैं तो वो कीजिए, बैक एंड पे रहकर सामने रहकर करें। और ये आप नहीं फैसला कर सकते कि आप क्या कर सकते हैं, ये वक्त फैसला करता है, ये अल्लाह ने बताया होता है कि किस बंदे को क्या करना है। तो दुआ कीजिए अल्लाह में दीन की सीधी समझ दे दे, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, कल इसका फाइनल सेशन है, बहुत अहम होगा, बहुत सारी टर्म्स को आपकी मैं कोशिश करूंगी सम अप कर दूँ और A to Z पूरा एक गो पे भी कर दूंगी इंशाल्लाह। जिंदगी रही। चलिए सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।